الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. اس کا اس میں ہم سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر پڑھتے ہیں معارف القرآن جلد نمبر 5 سے، اور جو آیات ابھی تلاوت کی گئیں آیات نمبر 78 سے 82 تک، تو ان کی خلاصہ تفسیر پڑھنا ہم نے پچھلی کلاس میں شروع کر لیا تھا. تو خلاصہ تفسیر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بیان القرآن سے مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ نقل فرمائی ہے، اور اس کا فارمیٹ یا اس کی ترتیب ایسے ہوتی ہے کہ جو انڈر لائنڈ ورڈز ہوتے ہیں، یعنی بین السطور تحت السطور، تو وہ ترجمہ ہوتے ہیں، اور پھر جو بین القوسین یعنی بریکٹس کے اندر جو ہوتی ہیں وہ مختصر تفسیر ہوتی ہے. تو اس طرح سے نا پوری عبارت کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لے کے چلتے ہیں کہ ترجمہ بیان کیا، پھر تھوڑی سی اس کی تفسیر بیان کر دی، یا اس سے پہلے تھوڑی تفسیر بیان کری، پھر ترجمہ بیان کیا، پھر اس کے بعد تفسیر بیان کری، پھر ترجمہ بیان کیا، پھر تفسیر بیان کری. اس طرح سے ان کے یہ بیان القرآن کا طریقہ تھا. دوسری تفاسیر کے اندر دوسرے طرق بھی استعمال ہوئے ہیں کہ جیسے بس آیات نقل کر دیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اردو زبان میں ان کی جو ہے وہ تفسیر بیان کر دی، یا کسی جس جس بھی زبان میں تفسیر ہے اس میں اس کی تفسیر بیان کر دی. تفسیر جلالین جو کہ تفسیر کی بہت زیادہ مشہور کتب ہے، کتاب ہے، دو کتابیں ہیں یہ جلالین شریف، اسی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے. ایکچولی نہیں، جو دو جلال حضرات نے اس کو مرتب کیا تھا. anyway, تو وہ سب سے مشہور کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. تو اس میں بھی بالکل یہی طریقہ ہے کہ ترجمہ اور پھر تفسیر، پھر ترجمہ، پھر تفسیر، پھر ترجمہ، پھر تفسیر، اس طرح سے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ترجمہ اور تفسیر میں پھر فرمایا تھا کہ آفتاب ڈھلنے کے بعد سے رات کے اندھیرے تک نمازیں ادا کیجئے. اقم، اقم کا مطلب ہوتا ہے قائم کیجئے، الصلات، ٹھیک ہے، یعنی صرف ادا کا لفظ نہیں ہے بلکہ قائم کرنے کا لفظ ہے. سلو، سلو ہوگا نماز پڑھو، ٹھیک ہے. تو سلو کا لفظ جو ہے وہ اگرچہ حدیث کے اندر آیا ہے کسی اور بات کو سمجھانے کے لیے، لیکن قرآن مجید میں اقم الصلاۃ کا لفظ آیا ہے. تو لدلوک الشمس الی غسق اللیل، تو اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء چار نمازیں آ گئیں، جیسے کہ حدیث میں اس اجمال کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے. اور صبح کی نماز بھی ادا کریں، صبح کی نماز بھی، ٹھیک ہے. تو قرآن مجید کے الفاظ کیا ہیں؟ وقرآن الفجر، ٹھیک ہے. تو اس کا ترجمہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے دیکھیں کیسے کیا، صبح کی نماز، حالانکہ لفظی ترجمہ تو بنتا ہے فجر کا قرآن، فجر کا قرآن بس، لیکن یہاں پر لفظ قرآن کا استعمال ہی نماز کے معنی میں ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ترجمہ ہی جو ہے نا وہ صبح کی نماز سے کیا، تفسیر نہیں، ترجمہ ہی صبح کی نماز سے کیا اس کا. क्योंकि कभी कोई लफ्ज बोल करके मुराद जो है ना वो उसका जुज बोल करके कुल मुराद ली जाती है। तो कुरान मजीद जो है वो नमाज का जुज है, नमाज का पोर्शन है, पार्ट है नमाज का, लेकिन जुज बोल करके कुल मुराद लिया जाता है। ठीक है, जैसे कल्ब बोल करके रूह मुराद ली जाती है। ठीक है, रूह कुल है और कल्ब जो है वो इसका एक जुज है। इसी तरह से यहां पर भी तर्जुमा ही सुबह की नमाज। अब तफसीरन लिख दिया अदा करें। ठीक है, क्योंकि अकम का जो लफ्ज है ना वो यहां पर भी अप्लाई हो रहा है, तो इस वजह से तफसीर से इस बात को समझा दिया कि अकम कुरान अल फजरी, फजर की नमाज भी तुम कायम करो बेशक सुबह की नमाज। अब आगे बढ़ते हैं, इन कुरान अल फजर, बेशक सुबह की नमाज काना मशहूदा, मशहूद है। ठीक है, तो अब मशहूद है का तर्जुमा तो कर दिया, हाजिर होने का वक्त है। ठीक है, लेकिन तफसीर क्या है, किसके हाजिर होने का? अब ये तफसीर है क्योंकि यहां पर अल्फाज के अंदर ये चीज मौजूद नहीं है कि कौन शाहिद है इसका। तो अब तफसीर से बात समझाई जाएगी, इसको खोला जाएगा, इसका बयान किया जाएगा कि फरिश्तों के हाजिर होने का वक्त है ये, क्योंकि अल्फाज में ये तफसीर नहीं है, कुरान के अल्फाज में ये तफसीर नहीं है। ठीक है, कि मशहूद अल मलाइका, मशहूद अल मलाइका नहीं है बल्कि सिर्फ मशहूद आए। तो अब तफसीर में बताया जाएगा कि फरिश्तों के हाजिर होने का वक्त है। ठीक है, सुबह का वक्त चूंकि नींद से बेदार होने का वक्त है। अब इसकी तफसील मजीद बयान कर रहे हैं कि फरिश्तों के हाजिर होने का वक्त क्यों है। सुबह का वक्त चूंकि नींद से बेदार होने का वक्त है जिसमें सुस्ती का खतरा था, इसलिए उसको अलग करके एहतमाम के साथ बयान फरमाया। और इसकी एक मजीद फजीलत भी ये बयान कर दी कि उस वक्त में फरिश्ते जमा होते हैं। ठीक है, यानी कुरान अल फजर को चार नमाजों से अलग क्यों बयान किया, सलातुल फजर को अलग क्यों बयान किया, उसकी ये वजह है कि इसका ज्यादा एहतमाम जो है ना, इसकी ज्यादा यानी मुश्किल भी होता है, और जो चीज ज्यादा मुश्किल होती है तो उसकी ताकीद भी ज्यादा की जाती है और उसका सवाब भी ज्यादा होता है, उसका अजर भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब जो फरिश्ते जमा होते हैं इसकी क्या तफसील है, फरमाते हैं इसकी तफसील हदीस से यह मालूम हुई कि इंसान की हिफाजत और उसके आमाल को लिखने वाले फरिश्ते दिन के अलग और रात के अलग हैं, दिन के अलग और रात के अलग हैं, इंसान की हिफाजत के फरिश्ते और उसके आमाल को लिखने वाले फरिश्ते। अब किरामन कातिबैन जो हैं वो यहां पर जो जिस हदीस से हजरत ने ये बात अखज करी है तो यकीनन ऐसी हदीस होगी, वरना जो आम जो 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 मफहूम समझा जाता है वो ये है कि किरामन कातिबैन जो है ना, जो कंधों के ऊपर बैठे फरिश्ते होते हैं वो तो एक ही रहते हैं सारी जिंदगी, और कयामत के दिन वही फरिश्ते जो है ना वो इंसान के एक आगे चल रहा होगा, एक पीछे चल रहा होगा। ठीक है, एक के पास जो है वो उसके नेक अमाल का रजिस्टर होगा और दूसरे के पीछे जो है के पास जो है वो उसके दूसरे बुरे अमाल का रजिस्टर होगा। लेकिन ऐसा भी मुमकिन है, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, और कयामत के दिन जो है ना वो ये भी हो सकता है कि जो आखिरी करामन कातिबैन इसके ऊपर मामूर किए गए थे वो, जाहिर है जो आखिरी होंगे उन्हीं के पास रजिस्टर होगा ना, पुराने वालों ने तो रजिस्टर हैंड ओवर कर दिया अगली ड्यूटी वालों को, अल्लाह आलम बिस्सवाब। ठीक है, तो ये जो खैर इंसान की हिफाजत के फरिश्ते, इसमें तो कोई कोई इश्काल भी नहीं है कि भाई वो चेंज होते रहते हैं, वो जैसे गार्ड्स की ड्यूटी बदलती रहती है। राइट, ये जो इंसानी गार्ड्स होते हैं ना किसी जगह को, वो सिक्योरिटी गार्ड्स, तो वो सिक्योरिटी गार्ड 24 घंटे काम नहीं कर रहे होते, बल्कि एक उनकी एक की दिन की ड्यूटी होती है, दूसरे की जो है वो रात की ड्यूटी, हत्ता कि अस्पताल के जो अमला होता है उसकी भी दिन की ड्यूटी होती है, रात की ड्यूटी है। 24 आवर्स जहां भी काम होगा ना वहां पे ड्यूटियां तब्दील होंगी। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भी ऐसे ही बना दिया कि उनकी भी ड्यूटियां जो है वो 24 आवर्स की हैं, तो उनको जो है ना वो 12 12 12 आवर्स के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अल्लाह की मर्जी भाई। ठीक है, तो इंसान की हिफाजत और उसके अमाल को लिखने वाले फरिश्ते दिन के अलग हैं और रात के अलग हैं। सुबह की नमाज में दोनों जमातें फरिश्तों की जमा होती हैं, यानी सुबह की नमाज में नहीं कि नमाज पढ़ने के लिए जमा होती है, बल्कि वो जो वक्त होता है ना नमाज फजर का, ठीक है, तो उस वक्त दोनों फरिश्तों की जमातें जमा होती हैं। रात के फरिश्ते अपना काम खत्म करके और दिन के फरिश्ते अपना काम संभालने के लिए मुज्तमा हो जाते हैं। इसी तरह शाम को असर की नमाज में, यानी असर की नमाज का जो वक्त होता है, उसमें दोनों जमातें जमा होती हैं, और जाहिर है कि फरिश्तों का इज्तिमा बायसे बरकत है। ठीक है, दोनों जमातें जमा कैसे हो जाती हैं? ऐसा हो सकता था कि पहली जमात जो है ना, वो रजिस्टर को जो है वो स्टैम्प स्टैम्प करके छोड़े और चली जाए। अब उसके जाने के बाद दूसरी जमात आए, तो बीच में जो है ना, वो कोई अनअटेंडेड पीरियड भी हो सकता था कि जिसके अंदर कोई जमात मौजूद नहीं है, ये चले गए, अब अगले वाले आ रहे हैं। जैसे कभी कभार हो जाता है दफ्तरों के अंदर भी, और ये हॉस्पिटल वगैरह के अंदर की भी, वो अभी वो स्टाफ चला गया है, अभी दूसरा स्टाफ जो है ना वो आ रहा है बस। ठीक है, तो अनअटेंडेड टाइम होता है। एक तो अल्लाह ताला ने अनअटेंडेड टाइम छोड़ा ही नहीं, कोई ऐसा वक्त ही नहीं छोड़ा कि जिसके अंदर फरिश्ते मौजूद ना हो इंसान के पास। और दूसरा ये कि अगर ऐसा होता कि बस ये जाते और वो आते, राइट, कि भाई फरिश्ते हैं और उनके अंदर, इनके अंदर सुस्ती काहली और लेट हो जाने का तो कोई एहतमाल ही नहीं हो सकता, तो अनअटेंडेड टाइम तो कोई नहीं होता, लेकिन इंसान का नुकसान होता। इनका इंसान का नुकसान क्या होता कि जो डबल रहमतें उसको मिलती दोनों शिफ्ट्स के एक साथ जमा होने की वजह से, उस नेमत से, उस रहमत से जो है वो इंसान महरूम हो जाता, हम और आप महरूम हो जाते। हमारे परवरदिगार ने इस डबल रहमत का इंतजाम फरमाया। ठीक है, और ये रहमत और बरकत जो जो होती है, तो ये कोई अनहोनी किस्म की, कोई नॉन एग्जिस्ट, कोई 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 और चीज नहीं है, ये फरिश्ते ही हैं। यानी रहमत के फरिश्तों का नाजिल होना यही रहमत का नाजिल होना है। उसी तरह से जब अल्लाह ताला की पकड़ आती है, जब इस तरह का कोई हनाक करने वाला अजाब आता है, तो वो अजाब जो है ना, उसकी अपनी कोई शक्ल नहीं होती, बल्कि वो फरिश्तों के जरिए से अल्लाह ताला भेजते हैं। ठीक है, फरिश्तों को, यानी अजाब की जो भी फॉर्म होती है, चाहे वो पत्थरों की शक्ल में हो, चाहे वो हवाओं की शक्ल में हो, चाहे वो पानी की शक्ल में हो, चाहे वो किसी बस्ती को उठा करके उलटने की शक्ल में हो, ये सारे काम जो है वो अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए से करवाते हैं। ठीक है, बच्चों की साइंस की क्लास में हमने ये अल्लाह की तौफीक से कॉन्सेप्ट समझाया कि भाई ये जो जमादात होते हैं ना, जिसको के साइंस की लैंग्वेज में नॉन लिविंग थिंग्स कहा जाता है, ठीक है, इनके अंदर भी रूह तो होती है, लेकिन इनकी रूह जो है ना, वो इतनी कमजोर होती है कि ये खुद से मूव नहीं कर सकते, ये खुद से मूव नहीं कर सकते। जो नबातात होते हैं, यानी प्लांट किंगडम वाले, इनकी रूह भी होती है, बहुत कमजोर होती है, लेकिन इतनी इनके अंदर ताकत होती है कि ये ऊपर और नीचे की डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, राइट और लेफ्ट और फ्रंट और बैक की डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते। ठीक है ना, यानी ये ग्रो कर सकते हैं अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, इनकी रूट्स नीचे ग्रो करती हैं और इनकी जो है ना वो जो स्टेम, जो जो तना होता है, वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है। तो इनमें ग्रोथ वाली ताकत है, पत्थर ग्रो नहीं कर सकता, वाटर ड्रॉप हो या वाटर मॉलिक्यूल हो, ये ग्रो नहीं कर सकता, इसमें इतनी भी ताकत नहीं है। ठीक है, हैवानात के अंदर इससे भी ज्यादा ताकत अल्लाह ताला ने दी कि वो जो है ना, वो यानी ग्रो तो करते ही हैं, लेकिन वो मूव, यानी हर तरफ मूव कर सकते। अच्छा, प्लांट जो है उनके अंदर ये है कि वो, उनमें से कुछ प्लांट्स जो होते हैं ना, जो कि बाकायदा लाइक खैर वो उनको तो, वो तो फिर ग्रो ही की डेफिनेशन के अंदर आते हैं, मूव की डेफिनेशन में तो वो नहीं आता। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो कि बाकायदा मूव भी कर लेते हैं, जैसे कि वो जो कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जब मक्खी आकर के बैठती है तो वो बंद हो जाते हैं। तो ये बंद होने का जो फेल है, ये ग्रो करने वाला फेल नहीं है, राइट, ये उगने वाला, बढ़ने वाला फेल नहीं है, ये तो बाकायदा वो बंद हुआ है ना, तो ये मूवमेंट है उसके अंदर। ठीक है, तो कुछ प्लांट्स के अंदर बाकायदा मूवमेंट भी होती है, एनिमल लाइक मूवमेंट होती है, लेकिन वो एनिमल की क्लासिफिकेशन के अंदर वो दाखिल नहीं होते। बहरहाल, तो ये तो अल्लाह ताला की मखलूकात है ना। तो अब ये जो अजाब आता है ना, ये जमादात की शक्ल में आता है, तो जमादात तो मूव ही नहीं कर सकते, खुद से तो हिल ही नहीं सकते, तो उनको हिलाने के लिए एक एनर्जी की जरूरत होती है, एक तवानाई की जरूरत होती है। ये तवानाई कहाँ से आती है? ये तवानाई जो है ना, वो उनके पास से आती है जिनके पास ज्यादा मजबूत और ज्यादा कवी रूह होती है, ज्यादा कवि, ज्यादा ताकतवर रूह जिनके पास होती है ना, उनके जरिए से ये चीजें मूव होती हैं। वो कौन है? फरिश्ते या इंसान या जिन? फरिश्ते या इंसान या जिन, ठीक है। तो जब काफिर के ऊपर ऐसा अजाब आता है जिसमें कोई इंसान इन्वॉल्व नहीं होता, तो वो फरिश्ता पत्थर लेकर के आ रहा हो, पत्थर फेंक रहा होता है, हवा चला रहा होता है। हवा, हवा क्या क्या है ये? हवा, हवा गैस है, गैस, राइट। और गैस क्या है? अब हम जो है वो साइंस की थोड़ी टिटबिट जो है वो हमें आ गई है 20वीं सदी में आकर के। हम कहते हैं गैस जो है वो क्या है? वो मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, और डस्ट पार्टिकल्स हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हैं, और ये सारी चीजें, राइट। तो फरिश्ते इनको हिलाते हैं, ये खुद से नहीं हिल सकते, ये खुद से नहीं हिल सकते, क्योंकि इनके अंदर इतनी ताकत वाली रूह नहीं है कि ये खुद से हिल सकें, ठीक है। तो इसी तरह से अजाब जो है, यानी ये पूरी बात कहां से शुरू हुई थी कि भाई जो अजाब आता है ना, ये फरिश्ते लेकर के आते हैं, ठीक है। उसी तरीके से रहमत, ये रहमत किसी आंटी का नाम नहीं है, राइट, किसी चीज का नाम नहीं है, वो खुद से चल करके आना शुरू हो जाए, खुद से उड़ करके आना शुरू हो जाए। ये फरिश्तों का नुजूल, उनका जो वजूद है ना, नूरी वजूद, ठीक है। और रहमत वाले फरिश्ते, अब अजाब वाले फरिश्ते रहमत लेकर के नहीं आ रहे, अल्लाह ताला ने उनका अलग काम बनाया हुआ है, इनका अलग काम बनाया हुआ है, ठीक है। तो जो रहमत वाले फरिश्ते जब नाजिल होते हैं, तो फिर अल्लाह ताला की रहमत आ रही है, उन्हीं के साथ साथ ही आ रही है, उनका होना ही रहमत है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ये ईमान बिल मलाइका, हम कहते हैं ना आमन तो बिल्लाही व मलाइकती। तो क्या है ईमान मलाइका के ऊपर? ये है ईमान मलाइका के ऊपर कि अल्लाह ताला ये सारे के सारे काम जो है ना, वो फरिश्तों के जरिए से करवाते हैं, बगैर फरिश्तों के नहीं हो रहे होते, बगैर फरिश्तों के नहीं हो रहे होते, ठीक है ना। या तो अल्लाह ताला एज एन एक्सेप्शन कोई काम बगैर फरिश्ते के करते हैं, तो वो खुद करते हैं, खुद करते हैं, या इंसान से करवाते हैं, या हैवान से करवाते हैं, या जिन से करवाते हैं, ठीक है ना। या तो खुद करते हैं, जैसे शहीद की रूह कब्ज करना, वो आता है कि शहीद की रूह जो है वो मौत का फरिश्ता कब्ज नहीं करता, अल्लाह रब्बुल इज्जत कब्ज करते हैं डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के साथ, ठीक है। उसी तरीके से कोई काम, जैसे काफिर को के ऊपर अजाब आता है, काफिर की मौत उसके लिए अजाब है, ठीक है ना, खाली पत्थर पड़ जाना नहीं, बल्कि मरना उसके लिए अजाब है, काफिर के लिए। तो कभी अल्लाह ताला मोमिन इंसान के जरिए से उसको मरवाता है, मोमिन इंसान गोली मारता है, मोमिन इंसान तलवार चलाता है, ठीक है। तो मोमिन इंसान के जरिए से उसको, उसके ऊपर अजाब आता है। बाकी जान निकालने के लिए फरिश्तों को भेज देते हैं, जो कि हर एक की जान निकालता है, मोमिन की भी जान वही निकालता है, काफिर की भी जान वही निकालता है, लेकिन अजाब मोमिन इंसान के जरिए से अल्लाह ताला ने दिलवाया उसको, ठीक है। तो ये फरिश्तों का जो ईमान है ना, फरिश्तों के ऊपर जो ईमान है, ये हमें समझ में आना चाहिए, और ये हमें अपने औलादों को बताना चाहिए, क्योंकि हम औलादों को बड़े शौक के साथ साइंस पढ़वाते हैं, जरूर पढ़वाएं, हम भी पढ़वाते हैं, राइट, पढ़ाते भी हैं, पढ़वाते भी हैं, जरूर पढ़ाएं, लेकिन ऐसा ना हो कि साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस के बाद ये फरिश्तों का वो इनकार करना शुरू हो जाए, राइट, फरिश्तों के इनकारी बन जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना फिर आप बताए क्या होगा, ठीक है। तो फरमाते हैं कि जी फरिश्तों का इज्तिमा बायसे बरकात है, और किसी कदर रात के हिस्से में भी नमाज अदा करें, यानी इसमें नमाज तहज्जुद पढ़ा करें, किसी कदर यानी कुछ हिस्सा नमाज का जो है वो उसमें तहज्जुद की नमाज पढ़ा करें, जो कि आपके लिए 5 नमाजों के अलावा एक जायद चीज है, ठीक है, फतहज्जत बिही नाफिलतन लका, नाफिलतन लका आपके लिए, लका ठीक है, ये पश्तो वाला लका नहीं है, अरबी वाला लका आपके लिए, ठीक है। इस वजह से तर्जुमे में लिखा कि आपके लिए एक जायद चीज है, नाफिलतन, नाफिला का तर्जुमा कैसे किया, जायद चीज। इस जायद से अब मुराद क्या है, तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसकी मुख्तसर तफसीर लिखी, और बाकी तफसीली तफसीर जो है वो हम बारकों मसाइल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। कहते हैं कि इस जायद से मुराद बाज के नजदीक, यानी बाज उलमा के नजदीक एक जायद फर्ज। देखें तफसीर की भी कभी तफसीर करने की जरूरत पड़ती है, अभी पीछे हमने फरिश्तों के बारे में कितनी सारी तफसीर करी ना, तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ऑलरेडी तफसीर कर चुके थे, अब हम क्यों कर रहे हैं। इसलिए कि डिपेंडिंग ऑन द ऑडियंस, उनके लिए जो तफसीर किसी ने करी थी आज से 100 साल पहले वो काफी नहीं होगी, या उसकी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि अभी में रिपीट करने की जरूरत है, तो हम तफसीर की तफसीर करेंगे, ठीक है। उसी तरह यहां पर बाज, अब बाज क्या मतलब, बाज लोग, बाज जो है वो कौन, बाज बाज उलमा, ठीक है। तो बाज उलमा के नजदीक एक जायद फर्ज है जो खास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फर्ज किया गया, और बाज उलमा ने मुराद जायद से नफिल दी, क्योंकि नफिल जो होती है वो एक एक्स्ट्रा एडिशनल जायद चीज होती है। क्या मतलब जायद चीज, फर्ज कर्ज है, फर्ज क्या है हमारे ऊपर, कर्ज है, ठीक है, वो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर वाजिब, ये पेमेंट है ये, ठीक है, जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं, हमने इसकी पेमेंट पीछे से तो नहीं करके आए, हमें तो फ्री में मिली ना, लेकिन फ्री में मिलने के बाद अल्लाह ताला ने उसकी पेमेंट की है, क्या मतलब पेमेंट रखी है, क्या मतलब नहीं पेमेंट करोगे तो वापस ले दी जाएंगी, नहीं अभी वापस नहीं दी जाएंगी, बाद में वापस ले दी जाएंगी, यानी एक ऐसी पेमेंट है कि ये नहीं होता कि अभी अगर हमने पेमेंट नहीं करी तो फौरन से वापस ले दी जाएगी, नहीं, अल्लाह ताला हलीम है, करीम है, हकीम है, फौरन से वापस नहीं लेते, ढील देते हैं, मौका देते हैं, मोहलत देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये बात कह दी जाती है कि हम तो फ्री में ये नेमतें लेकर के आए हैं ना, और फ्री में इनको एंजॉय कर रहे हैं, अब इसकी पेमेंट फर्ज की अदायगी के जरिए से हम करेंगे तो आखिरत की जिंदगी में हमारे पास ये नेमतें रहेंगी, आखिरत की जिंदगी में रहेंगे, और इस जिंदगी में भी, इस जिंदगी में रहती ही हैं, इल्ला ये कि इतना पेमेंट का, इतनी जो है वो नेगेटिव पेमेंट करना शुरू कर दे, मनफी वाली पेमेंट करना शुरू कर दे, यानी बहावत के ऊपर उतर आए और बहुत ज्यादा अल्लाह ताला की दुश्मनी पर उतर आए, तो फिर तो इस दुनिया के अंदर भी ये नेमत वापस ले ली जाती, ठीक है ना, वरना दुनिया में तो चलती रहती है, मौत के बाद वापस ले ली जाती है, ठीक है। तो फर्ज क्या है, ये तो कर्ज है, ये तो पेमेंट है, ठीक है। अब पेमेंट के ऊपर एडिशनल जो आप चीज करते हैं ना, कि आपने साथ साथ जो है वो कुछ और भी दे दिया, वो सारा का सारा नफिल होता है, इसी वजह से उर्दू जुबान में इसको जायद से ताबीर किया, ठीक है। इसी वजह से ना जो अल्लाह ताला की खसूसी मोहब्बत मिलती है ना, जो एडिशनल मोहब्बत मिलती है वो नफिल के जरिए से मिलती है, ठीक है। पांच नमाजों के अलावा एक जायद चीज, अच्छा किसी, माशाल्लाह आप में से किसी की औलाद ने जो है ना वो हमसे एक दफा सवाल किया कि इबादत नहीं की जा रही होती, यानी तबीयत जो है ना वो मायल नहीं होती इस तरफ के इबादत करना, अच्छा उम्र भी उनकी कोई बहुत ज्यादा नहीं, 13 14 15 के दरमियान, तो बहुत सारे इसके जवाब दिए जा सकते थे या मेरे ध्यान में आ सकते थे उनको जवाब दे, लेकिन अल्लाह ताला ने अजीब उस वक्त जो है ना वो जवाब दिल में डाला, ठीक है, और यही वाला पॉइंट उस वक्त जो है वो अल्लाह ताला ने याद दिला दिया उसको, फिर इसी के बुनियाद पे समझाया कि देखें जो फराइज है ना, तो फराइज जो है ना ये तो तबीयत के माइल होने का इंतजार नहीं करना हमने, कि मेरी तबीयत में जो है वो नमाज पढ़ना आएगा तब मैं नमाज पढ़ूंगा, मैं नमाज पढ़ने का आते ही नहीं है, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा होता नमाज पढ़ने का, तो इस वजह से जो है वो मुश्किल हो जाती है, नहीं, बल्कि फर्ज क्यों अदा करना है, ठीक ठीक है, ये चले आप जल्दी से बता दें। फर्ज किस जज्बे के तहत अदा करना है? ठीक है, तबीयत माइल होने की बात हो रही है ना, सवाल उसने कहा किया बच्चे ने कि जी वो दिल नहीं चाह रहा होता या जो है वो शौक नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो हमने कहा ये नहीं, फराइज जो है ना ये तो आपने किसी और जज्बे जज्बे से करने होते, वो कौन सा जज्बा होता है ये आप बता दो, किसी और रीजन की वजह से, किसी और दिल में एक और जज्बा होना चाहिए। ठीक है, हुक्म इलाही है। अच्छा, माइल माइल की बात हो रही है ना, यानी आपकी तबीयत में शौक हो रहा है, ठीक है ना, तो अब शौक आपने जवाब दिया हुक्म इलाही है, ठीक है, लेकिन हाँ अगर आप सवाल पे गौर करें तो उसके हिसाब से जवाब, दिल में शौक नहीं हो रहा, ठीक है जी ठीक है, क्योंकि हुक्म ये किसी और ने लिखा था, क्योंकि हम अब्दुल लतीफ हैं, अब्दुल लुत्फ ने, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर हाल में पूरा करना जी, पिटाई से बचना, पिटाई से बचने के लिए सजा के खौफ की वजह से, शौक की वजह से नहीं, खौफ की वजह से, क्योंकि अभी क्या पीछे बात हुई है, थोड़ी देर पहले क्या बात हुई है, नहीं करोगे तो नेमत छीन ली जाएगी, ये नेमत के छिन जाने का क्या है, खौफ है, नेमत के छिन जाने का खौफ होता है, ठीक है, क्योंकि वो हुक्म पर कर्ज है वो अदा करना, तो कर्ज आप किसी का जब कर्ज अदा नहीं करते तो क्या होता है उसके बाद, फिर है? जब कर्ज अदा नहीं करते तो फिर पेनल्टीज लगती है ना, फिर उसके बाद जो है वो हो सकता है उसके पास और ताकत हो तो वो आपको आपके घर पे पुलिस भेज दे, है ये हो सकता है कि आपके जो है वो घर को जो है वो कब्जे में कर ले, ठीक है ना, आपने कर्ज अदा नहीं किया तो वो आपके घर पे कब्जा करके उसको बेच करके फिर अपना कर्ज अदा करवा लेगा, तो ये क्या है, खौफ है ना, कर्ज नहीं अदा किया तो भाई मुश्किल हो जाएगी, राइट, खौफ की वजह से, अजाब के खौफ की वजह से, और अजाब क्या होता है, नेमत के छिन जाना, ठीक है, तो फराइज की अदायगी दिल के शौक की वजह से, भाई है अगर शौक तो बड़ी अच्छी बात है, राइट, नाइस टू हैव, बड़ी अच्छी बात है आपके अंदर फराइज का शौक है, ठीक है ना, लेकिन अगर शौक नहीं है तो शौक का इंतजार नहीं करना है, शौक का इंतजार नहीं करना है कि शौक होगा तो मैं फर्ज अदा करूंगा, नहीं, खौफ की वजह से करना है, ठीक है। अच्छा, अल्लाह की रहमत यह है कि एक तो उसने जो है वो ये नहीं किया कि भाई फर्ज अदा करोगे तब मैं तुम्हें खाना दूंगा, फर्ज अदा करोगे तब मैं तुम्हें पीना दूंगा, तब फर्ज अदा करोगे तब मैं तुम्हें कपड़े दूंगा, वरना ऐसे ही रहोगे, ये नहीं किया अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला की रहमत की एक जो है वो जहूर ऐसे है, दूसरा रहमत का जहूर किया कि जब हम खौफ की वजह से भी फराइज अदा करते हैं ना तो अल्लाह ताला हमें किस चीज से नवाजता है, किस एक जो एडिशनल चीज थी जो कि पहले हमारे पास नहीं थी, राइट, शौक नहीं था हमारे पास, शौक नहीं था हमारे पास, खौफ था खाली, जब खौफ की वजह से आपने फराइज अदा किए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शौक से नवाज दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शौक से नवाज दिया, अब जो है ना वो नफले पढ़ो, शौक से पढ़ो, अब शौक से क्या करो, नफले अदा करो, और फराइज के अदा करने में भी तुम्हें मजा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, फराइज में भी मजा आना शुरू, यानी शौक अब ये नहीं है कि अब फराइज तो तुम खौफ की वजह से अदा करते रहोगे सारी जिंदगी और नवाफिल तुम शौक के साथ अदा करोगे, नहीं, अब फराइज में भी शौक शामिल हो जाएगा और नवाफिल के लिए भी जिस शौक की जरूरत थी वो वाला शौक भी मिल जाएगा, ठीक है, माशाल्लाह काफी उन्होंने जवाब दिए थे, सारे मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, जैसे स्कूल का होमवर्क दिल चाहे या ना चाहे करना ही है, और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में चॉइस है, बट होमवर्क में चॉइस नहीं होती, पनिशमेंट मिलती है जी, फराइज का तो यही मामला स्कूल वाला मामला चले जी, आपने मिसाल दी, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत का मामला यह है कि फिर फर्ज के अदायगी के बाद फिर अल्लाह ताला शौक से भी नवाजते हैं, फिर उसके बाद आप करते हैं नफले, लेकिन ये नहीं होता जो हम कर रहे हैं ना आजकल। हम तो कर रहे हैं ना कि फर्ज के बगैर हम नफले अदा कर रहे हैं। तो ये तो कोई अजीब व गरीब किस्म की एक तरतीब है जो कि हमने बनाई हुई है या शैतान ने हमसे बनवा दी है। फर्ज नहीं करना, फर्ज का कोई इरादा ही नहीं, नफले करनी, ठीक है ना। ये तो बस एक शैतानी किस्म की, दज्जाली किस्म की तरतीब है जिसका कि इस वक्त हम शिकार होए हुए हैं। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज फरमाए। अच्छा थोड़ा सा आपको ब्रेक लेना पड़ेगा जरा, कुछ चेक करना। तो हजरत फरमाते हैं कि जी, तो बाज ने मुराद जायद से नफिल ली। उम्मीद यानी वादा है, ठीक है। ये जो असा का लफ्ज इस्तेमाल किया तो उसको हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने तर्जुमा तो उम्मीद से किया और उसकी तफसीर की कि यानी वादा है, उम्मीद है। ये भी एक क्योंकि अल्लाह ताला को उम्मीद है तो अल्लाह ताला की उम्मीद, भाई उम्मीद हमारे कॉन्टेक्स्ट में जब लफ्ज उम्मीद इस्तेमाल होता है ना तो इसका मतलब ये होता है कि हमें तो उम्मीद ही है, जिस तरह उर्दू जुबान में उम्मीद होती है कि हमें पता कुछ नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। अल्लाह ताला को तो ये मामला नहीं है ना कि अल्लाह ताला उम्मीद करते हैं लेकिन अल्लाह ताला को कुदरती नहीं कि ये होगा, या इल्मी नहीं कि होगा कि नहीं होगा। तो जब लफ्ज उम्मीद अल्लाह के लिए इस्तेमाल होगा तो वो वादे के माने में इस्तेमाल होगा, ठीक है। यानी अल्लाह ताला ने आपको कह दिया ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसे नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, तो इसको तो वादा कहा जाता है, इसको उम्मीद को थोड़ी कहा जाता है, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट से जो है ना वो मानी भी बदल जाते हैं। जैसे तौबा का लफ्ज है, तौबा का लफ्ज, ठीक है, हमारे लिए इस्तेमाल होता है तो नदामत, शर्मिंदगी, आइंदा ना करने का इरादा, ये सब माने बनते हैं। अल्लाह की तरफ भी तौबा का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो क्या मतलब, अल्लाह ताला बंदे के साथ की तरफ रुजू करते हैं, रहमत के साथ, मगफरत के साथ रुजू करते हैं, ये अल्लाह ताला की तौबा है। हमारी तौबा और अल्लाह की तौबा में देखिए कितना फर्क है, हालांकि लफ्ज एक ही है, ठीक है। तो यहाँ फरमाते हैं कि उम्मीद यानी वादा है कि आपका रब आपको मकाम महमूद में जगह देगा, ठीक है। ये आप करेंगे आपको मकाम महमूद में जगह देगा। मकाम महमूद से मुराद शफाअत कुबरा का मकाम है जो महशर में तमाम बनी आदम के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता होगा, ठीक है, मुकाम अता होगा। अब अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर नबी अलैहिस्सलाम शफाअत नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। मंजल लजी यशफाउ इल्ला बिमाशा, ठीक है। तो अल्लाह ताला काफिर की शफाअत की इजाजत नहीं देंगे, मोमिन की शफाअत की इजाजत देंगे। बनी आदम तो काफिर भी होते हैं और बनी आदम तो मोमिन भी होते हैं, ठीक है। तो शफाअत कुबरा का मकाम है कि जो महशर में तमाम बनी आदम के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता होगा। और आप ये दुआ कीजिए कि ऐ मेरे रब, मक्का से जाने के बाद मुझको जहां ले जाना हो खूबी यानी राहत के साथ पहुंचाइए, और जब मक्का से ले जाना हो तो मुझको खूबी यानी राहत के साथ ले जाइए, ठीक है। ये जो है ना वकुल कह दीजिए, रब अदखिलनी मुदखला सिदकन, मुझे दाखिल कीजिए सिद्क के साथ दाखिल करना और मुझे निकालिए सिद्क के साथ निकालना। कल सफर से आप लोगों को हो गई इज्तमा में अल्लाह ताला ने शिरकत की तौफीक अता फरमाई, तो वहां से सफर से वापस पहुंचे या इवन सफर करके वहां पहुंचे थे तो सफर की दुआ नबी अलैहिस्सलाम ने सिखाई है ना, मसनून दुआएं, उनमें से एक दुआ ये भी है, रब्बे अदखिलनी मुदखला सिदकी व अखरिजनी मुखरज सिदकी व अजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ये सफर की दुआ नहीं है, सफर में जब आप किसी मंजिल पे पहुंच जाते हैं ना तब जो है वो मांगने की दुआ है, ठीक है, मसनून दुआ। और दूसरी एक बेहतरीन दुआ जो है वो अल्लाहुम्मा रज़ुकनी जनाहा, ए अल्लाह मुझे यहाँ के इस शहर के जहां पे मैं पहुंचा हूं ना, या इस मंजिल के जहां पे मैं पहुंचा हूं वहां की मुझे फल अता फरमाई। अल्लाहुम्मा रज़ुकनी जनाहा व हब्बिबनी इला अहलिहा, और यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, यहाँ के जो अहल हैं इस जगह के रहने वाले लोग, उनके नजदीक मुझे महबूब बना दीजिए, मुझे महबूब बना दीजिए, यहाँ के लोग मुझे पसंद करें, मुझसे नफरत ना करें, मुझे दुश्मन ना समझें। वह हब्बिबनी इला अहलिहा, और इसके बाद क्या फरमाया, वह हब्बिब सालिही अहलिहा इलैना, वह हब्बिब सालिही अहलिहा इलैना, और यहां के जो नेक लोग हैं ना उनकी मोहब्बत मेरे दिल में डाल दीजिए। यानी
मेरी मोहब्बत तो यहां के नेक व बद सबके दिल में डाल दीजिए, कोई मुझे दुश्मन ना समझे, कोई मुझसे जो है वो नफरत ना करे, इवन काफिर भी मुझसे मोहब्बत करें, काफिर भी जो है ना मुझे मुझे यानी अच्छा समझें, जैसे कि काफिर मुसलमानों को अच्छा समझते हैं, ठीक है ना, सिवाय ये कि जो लड़ाई पे उतरे हुए होते हैं, उनके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह नेक मोमिन होते हैं, जो अखलाक वाले मोमिन होते हैं, काफिर उनसे मोहब्बत करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अपनी मोहब्बत किसके लिए, नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, मुझे सबसे मेरे दिल में सबकी मोहब्बत पैदा ना कीजिए, मेरे दिल में काफिरों की मोहब्बत ना पैदा कीजिए, मेरे दिल में फासिकों की मोहब्बत ना पैदा कीजिए, बल्कि मेरे दिल में किसकी मोहब्बत पैदा कीजिए, वहब्बे सालिही अहलिहा इलैन, यहाँ के जो सालेह लोग हैं ना, नेक लोग, मुसलह की शर्त नहीं लगाई, ये जो दीन का काम करने वाले लोग नहीं, बस जो के गुनाहों से बचने वाले नेक लोग हैं, तो इनके इस शहर के अहल के में से जो नेक लोग हैं, तो उनको मेरे लिए महबूब बना दीजिए, उनको मेरे लिए महबूब बना दीजिए, ठीक है। क्या पता चलता है कि हमने फुसाक और फुजार से मोहब्बत नहीं करनी, हमने उनके लिए खैरख्वाही करनी है कि वो जहन्नुम से बच जाए, वो बच जाए, लेकिन मोहब्बत जो कल्बी जज्बा होता है ना, ये नहीं करना। खैरख्वाही अलग चीज होती है, मोहब्बत अलग चीज, ठीक है। और दोस्ती भी असल में मोहब्बत ही के लिए इस्तेमाल होता है। ये शैतान ने ना हमें ये मुगालते में डाल दिया है कि दोस्ती एक तीसरी किस्म की चीज होती है, मोहब्बत एक एक और चीज होती है, दोस्ती एक और चीज होती है, और जो है ना वो खैरख्वाही एक तीसरी किस्म, नहीं, दोस्ती और मोहब्बत सेम, दोस्ती इज इक्वल टू मोहब्बत, ठीक है ना। अब ये और बात है कि दोस्ती में भी एक किसी के साथ जो है वो हल्की दोस्ती होती है, किसी के साथ जो है वो ज्यादा दोस्ती होती है, किसी के साथ गाढ़ी दोस्ती होती है, वही मोहब्बत का मामला है, किसी के साथ कम मोहब्बत होती है, किसी के साथ ज्यादा मोहब्बत होती है, किसी के साथ जो है वो शदीद मोहब्बत होती है, किसी के साथ इश्क होता है, लेकिन है तो सेम चीज, ठीक है। इन कॉन्सेप्ट को जरा क्लियर रखें अपने जहन में और अपनी औलादों में भी ट्रांसफर करें, क्योंकि काफिर के साथ मोहब्बत से जो है ना वो फिर ईमान खत्म हो जाता है उसके बाद। अल्लाहुम्मरज़ुकनी जनाह वाली दुआ, तर्जुमे के एतबार से हर लड़की को अपने ससुराल जाते वक्त पढ़नी चाहिए, ऐसा मुझे महसूस हुआ अभी। हाँ भाई, वो मंजिल है लड़की की, ससुराल है, क्यों नहीं पढ़नी चाहिए, उसको यही तसव्वुर करे कि हाँ भाई, ये मेरे लिए मेरा मेरा सफर, जिंदगी का सफर जो है ना, उसके अंदर ये मेरी एक मंजिल है, बड़ी बड़ी बल्कि बड़ी अहम मंजिल है। अल्लाहुम्मा अरज़ुकना जनाह व हब्बिबनी इला अहलिहा व हब्बिब सालिही अहलिहा इलैना, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा ख्याल आपके दिल में है, मांगा करें इसको, बल्कि आजकल तो लड़कों को भी मांगनी चाहिए, ठीक है। एनीवे, तो आप ये दुआ कीजिए कि ऐ मेरे रब, मक्का से जाने के बाद मुझको जहां ले जाना हो खूबी यानी राहत के साथ वहां पहुंचाइयो, और जब मक्का से ले जाना हो अखरज यानी वहां से मुझे निकालना हो, तो मुझको खूबी यानी राहत के साथ ले जाइए, और मुझको अपने पास से इन कुफार पर ऐसा गलबा दीजिए, वजअल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, ऐसा गलबा दीजिए जिसके साथ आपकी नुसरत और मदद, जिससे वो गलबा पायदार और तरक्की पजीर हो, वरना आरजी गलबा तो कभी कभी कुफार को भी हो जाता है, मगर उसके साथ अल्लाह की नुसरत नहीं होती। ये भी एक है कि भी आरजी गलबा होता है, मोमिन को जो है वो पायदार गलबा चाहिए होता है, लेकिन साथ साथ ऐसा भी तो हो सकता है ना कि गलबा तो मिल गया, लेकिन अब गलबा मिलने के बाद जुल्म शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो जुल्म क्या है, ये अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी है, तो अल्लाह की मदद अगर नहीं थी तभी तो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करी, तभी तो शयातीन की बात माननी शुरू कर दी ना। अगर अल्लाह की मदद होती तो फिर शैतान की मानकर, नफ्स की मानकर किसी के ऊपर जुल्म ना करता, तो खाली गलबा नहीं मांगा, बल्कि गलबा अल्लाह की मदद के साथ मांगा कि मैं शैतान और नफ्स से मगलूब ना हो, ऐसा ना हो कि कुफार इंसानों के ऊपर तो मुझे गलबा मिल जाए लेकिन मेरे ऊपर नफ्स और शैतान को गलबा मिल जाए, तो ऐ अल्लाह मुझे आपकी मदद चाहिए, आपकी मदद के बगैर मुझे अपने दुश्मनों के ऊपर गलबा भी नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि मोमिन जो है ना सिर्फ बैरूनी दुश्मनों से
से उसका उसका उसकी लड़ाई नहीं होती, उसकी जो है ना ये छुपे हुए दुश्मन शैतान से भी लड़ाई होती है, और उसकी अंदरूनी दुश्मन नफ्स के साथ भी लड़ाई होती है। तो वो सबसे यानी सबके ऊपर गलबे की चाहता है ना वो, और वो अल्लाह की मदद के बगैर नहीं हो सकता। तो फरमाया कि मगर इसके साथ अल्लाह की नुसरत नहीं होती, इसलिए पायदार नहीं होता। और कह दीजिए कि बस अब दीन हक गालिब होने को आया और बातिल गया गुजरा हुआ, वाकई बातिल चीज तो यूं ही आती जाती रहती है। ठीक है, दीन हक गालिब हो गया। बच्चों की क्लास के अंदर बड़ी कई दफ़ा इसके ऊपर बात हुई कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमत व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना, ठीक है ना, और इजा जा नसरुल्लाह वल फतह, अल्लाह की मदद आ गई, नुसरत आ गई, फतह आ गई, राइट। इसका क्या मतलब था, व्हाट डिड इट मीन, क्या मतलब, ठीक है, दीन मुकम्मल क्या हो गया, इससे क्या हो गया, क्या इंडिया मुसलमान हो गया? उस जमाने में हिंद में कितनी बड़ी सिविलाइजेशन होती थी, चाइनीज सिविलाइजेशन कितनी हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशन है, ठीक है ना। क्या यूरोप फतह हो गया था, क्या अफ्रीका फतह हो गया था, बल्कि जो जो जजीरतुल अरब था वो भी पूरा का पूरा फतह नहीं हुआ था ना, ठीक है ना। उसके भी कुछ हिस्से जो है वो अभी तक रोमन्स के पास थे, और कुछ हिस्से जो है वो अभी तक जो है वो दूसरे काफिरों के पास थे, मुसैलमा कज़ाब जैसे लोगों के पास भी पूरा का पूरा जो है वो यमामा का इलाका था। तो फतह हो जाना ये तो हुआ ही नहीं, दीन गालिब आ गया। भाई दीन जो है वो कहाँ गालिब आ गया, मक्का मुकरमा में गालिब आ गया, मदीना तैयबा में गालिब आ गया, थोड़े से जजीरतुल अरब के ऊपर गालिब आ गया, नहीं, बल्कि क्या क्या हो गया, क्या चीज हो गई जो कि पहले नहीं थी, ठीक है ना। देखें दीन को रीसेट किया, ये लफ्ज हमने बच्चों की क्लास में इस्तेमाल किया था, तो उन्होंने यहाँ पे लिख दिया है, दीन रीसेट हो गया। रीसेट का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर को आप रीसेट कब करते हैं, ठीक है ना, जब कंप्यूटर के अंदर वायरसेस आ जाते हैं, जब जो है ना वो उसकी एप्लीकेशन जो है वो मैल फंक्शन करना शुरू कर देती है, ठीक है ना, खराबियां आ जाती हैं, तब उसको रीसेट कर दिया जाता है। अब वो बिल्कुल से फ्रेश हो जाता है, बिल्कुल से 0 मीटर हो जाता है, राइट। तो दीन के अंदर भी ऐसे ही हो गया था कि दीन तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ला चुके थे दुनिया के अंदर, इस्माइल अलैहिस्सलाम के जरिए से अरब में पहुंच चुका था, और इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम के जरिए से जो है वो अजम में पहुंच चुका था, लेकिन उसके अंदर बिदआत और खराफात जो है वो शामिल हो चुकी थी, हक और बातिल की तमीज खत्म हो गई थी, हक और बातिल की तमीज खत्म हो गई थी कि क्या चीज हक है क्या चीज बातिल है, गड़मड़ हो गया था मामला। हक की चीजें भी मौजूद थी, ये नहीं है कि सारा का सारा हक जो है वो मिट गया था और किसी को कुछ नहीं पता था कि क्या सही है, नहीं, हक भी मौजूद था, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो बातिल का ऐसा इम्तिजाज हो गया था कि कोई तफरीक नहीं कर पा रहा था उसके, राइट। नबी अलैहिस्सलाम ने आकर के ये जो मैल फंक्शनिंग, ये जो दजल, ये फरेब, ये झूठ, राइट, ये सब कुछ जो दीन के अंदर शामिल कर, अभी दीन तो एक ही है ना, नबी अलैहिस्सलाम कोई नया दीन लेकर के कोई थोड़ी आए थे, राइट। हाँ, शरीयत के कुछ अहकामात नए लेकर के आए थे, अकायद तो सारे के सारे वही थे जो आदम अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, नूह अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेकर के आए थे, अकायद सारे के सारे वही थे, और दीन तो असल में अकायद ही को कहते हैं, तो कोई नया दीन को थोड़ी आया था। तो क्या हो गया, क्या दीन कायम हो गया, राइट। ये जितने ये जो फरेब और धोखे थे ना, ये नबी अलैहिस्सलाम ने क्लियर कर दिए कि ये ऐसे नहीं है जैसा कि शैतान और बुरे इंसानों ने बना करके पेश कर दिया, ठीक है ना। अब ये जो डेफिनेशन थी ना दीन की, ये नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा तक पहुंचा दी, ठीक है ना, और सहाबा ने उसके ऊपर अपनी जान दे करके इसकी हिफाजत फरमाई, राइट, जान दे दी अपनी, मुसैलमा कज़ाब के खिलाफ भी, और अस्वद अंसी के खिलाफ भी, और जो है मानेईन ज़कात के खिलाफ भी, और दूसरे किस्म के जो थे, और जो रोमन्स थे और जो पर्शियंस थे, सब को परे हटा दिया और इस दीन की हिफाजत करी जैसे नबी अलैहिस्सलाम सेट किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इसकी हिफाजत जो है वो दीनी मदारिस की शक्ल के अंदर हो रही है, ठीक है। तो
ये नहीं हुआ कि बातिल चला गया तो अब जो है ना वो हिंदू सारे के सारे मर गए, और ईसाई भी मर गए, यहूदी भी मर गए, और जो है वो मजूसी भी मर गए, और सिर्फ मुसलमान रह गए दुनिया के अंदर। नहीं, ऐसा तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की दुनिया में आने के बाद ऐसा नहीं हुआ। आज कैसे हो जाएगा ये काम, राइट? तो दीन कायम होने का मतलब क्या, हक के आ जाने का मतलब क्या, ये मतलब है। और ये मतलब क्या है, ये जहनी, ये इल्मी मतलब है। ये देखें, ये इल्म हुआ सारा का सारा। ये सब क्या है, ये नॉलेज है, राइट? ये कोई फिजिकल, वही हम बच्चों की क्लास में कहते थे, कोई झंडे गाड़ना नहीं है कि झंडे गाड़ दिए, ये फतह हो गया, ये फतह हो गया, ये फतह हो गया। ये कोई फिजिकल एम्पावरमेंट नहीं आई, ठीक है ना? फिजिकल एम्पावरमेंट जो है वो अभी तक नहीं आई, और ना वो आएगी कभी भी। इंटेलेक्चुअल एम्पावरमेंट, जहनी कामयाबी, जहनी तौर पे जो है ना वो गलतफहमी का दूर हो जाना, और एक रिकॉर्ड बन जाना, एक क्लियर रिकॉर्ड का बन जाना, ठीक है ना? अब जिसको भी गलतफहमी होगी वो इस रिकॉर्ड के पास आकर के, इस डॉक्यूमेंटेड दीन के पास आकर के चेक कर सकता है कि हाँ भाई ये चीज सही है कि ये चीज गलत है, ये चीज दुनिया में कायम हो गई, ठीक है ना? और अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का जिम्मा भी ले लिया, अब इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ठीक है? तो हक आ गया, बातिल मिट गया। अब नबी अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया भी, जा अल हक, ऐसी आयत को जो है वो बुत तोड़ने के वक्त भी नबी अलैहिस्सलाम पढ़े जा रहे थे, पढ़े जा रहे थे उस वक्त भी, कभी काबतुल्लाह के अंदर जो इन्होंने, अल्लाह का घर है ये तो नहीं था कि किसी और का घर तो नहीं था, वो अल्लाह ही का घर था ना, लेकिन उसके अंदर मिक्स क्या कर दिया था, जो बातिल माबूद बना दिए थे, झूठे माबूद बना दिए, इन दोनों को मिक्स कर दिया था। अल्लाह की भी इबादत करो, लात मनात की भी इबादत करो, फलाने बुत से भी मांगो, अल्लाह से भी मांगो, इससे भी मांगो, इससे भी मांगो, यानी हक और बातिल दोनों को मिक्स कर दिया था। नबी अलैहिस्सलाम आए और बातिल खुदाओं को वहां से निकाल दिया, सिर्फ जो सच्चा खुदा था उसी का घर उसको बना दिया, वापस बना दिया, रीसेट कर दिया, ठीक है? अच्छा, वाकई बातिल चीज तो यूं ही आती जाती रहती है। हिजरत के बाद मक्का फतह हुआ तो ये सब वादे पूरे हो गए, और हम ऐसी चीज यानी कुरान नाजिल करते हैं, वनुनज्जिलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफा व रहमतुन लिलमुमिनीन, और हम ऐसी चीज यानी कुरान नाजिल करते हैं कि वो ईमान वालों के हक में तो शिफा और रहमत है, क्योंकि वो उसको मानते हैं और उस पर अमल करते हैं, जिससे उन पर रहमत होती है, और अकायदे बातिला और ख्यालाते फासिदा से शिफा। अकायदे बातिला जहन के अंदर होते हैं, ठीक है? ख्यालाते फासिदा जहन के अंदर होते हैं। ख्यालात आपके हाथ पे नहीं होते, ख्यालात और अकायद आपकी टांगों पे नहीं होते कि टांगे जो है ना वो गलत ख्याल की तरफ चल रही हैं, राइट? हाथ जो है ना वो गलत अकायद की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या ऐसा होता है? आपके हाथ बड़े होते हैं गलत अकायद की तरफ, आपके आपके टांग बड़े बड़ी होती है गलत ख्यालात की तरफ, इवन आंखें भी गलत ख्यालात की तरफ नहीं बढ़ी होती। ये सब का सब क्या है, जहन, सोच, ठीक है ना? तो नबी अलैहिस्सलाम भी सोच को रीसेट किया, नबी अलैहिस्सलाम ने भी, और फिर आमाल जो होते हैं वो सोच से निकलते हैं। सोच गलत, आमाल गलत, सोच सही, आमाल सही, ठीक है? और वही जो है ना वो मामला कुरान की रहमत का भी ये मामला होता है, और जालिमों को इससे और उल्टा नुकसान बढ़ता है कि जब वो उसको नहीं मानते तो अल्लाह ताला के कहर व अज़ाब के मुस्तहिक हो जाते हैं, ठीक है? किसी को कोई सवाल हो इस पूरी बहस डिस्कशन लेक्चर के बारे में तो वो भी पूछ लें, वरना जो है वो क्लास का टाइम भी मुकम्मल हो गया था, और बाकी मार्ग से मसाले इंशाल्लाह आगे चलेंगे क्लास में। अच्छा, क्या लिखा, क्या अगर औरत आलिमा हो तो उसको भी आलिम लड़की से शादी करनी चाहिए, या दीन का इल्म औरत को मर्द से ज्यादा ज्यादा हासिल नहीं करना चाहिए? मुझे मुझे मेरी फलानी बड़ी कह रही है इसलिए कंफर्म कर रही हूँ। क्या औरत अगर आलमा हो तो उसको आलिम लड़के से शादी करनी चाहिए, या दीन का इल्म औरत को मर्द से ज्यादा हासिल नहीं करना चाहिए, यानी गैर आलिम से जो है ना वो आलिमा औरत को शादी नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो इनकी चची इनको कह रही है, तो वो कंफर्म कर रही है इस वाली बात को, ठीक है? तो इसका जवाब जो है ना वो
अभी भी थोड़ा आपको बताएंगे, और इससे ज्यादा जो है ना वो ये बताएंगे कि हमने कुछ सीरीज ऑफ लेक्चर्स किया था जो आप में से काफियों ने ऑलरेडी सुना हुआ भी है, लेकिन हो सकता है आपने ना सुना हो, तो वो हमें आप याद दिला करके उसकी रिकॉर्डिंग मान लीजिएगा। अगर वो आपने सुन लिए और समझ लिए और आपका दिमाग ठीक हो गया ना, तो फिर जो है ना वो आप यानी फिर गैर आलम से भी शादी चलेगी। ठीक है, आप खैर पता नहीं आलमा है कि नहीं है, लेकिन अगर आलिमा औरत उन बातों का ख्याल कर रहे ना जो कि उन लेक्चर्स के अंदर हमने, और हमने क्या एक्चुअली एक आर्टिकल था किसी का लिखा हो, आलिमा जालिमा लेजिमा, ठीक है, अंग्रेजी का आर्टिकल था। फिर तो हमारी तो आदत है कि वो छोटी चीज को जो है वो कई कई घंटों तक बात करते रहते हैं उसके ऊपर, तो उस वजह से 7 घंटे का लेक्चर बन गया वो। तो वो अगर कोई आलिमा जो है ना वो इन बातों का ख्याल रख लेना, तो फिर तो वो गैर आलिम लड़के से भी शादी कर सकती है, और अगर नहीं तो फिर हाथ जोड़ते हैं कि मत शादी करके लोग गैर आलिम लड़के से, बल्कि आलिमा है तो वो मुफ्ती से शादी करे, ठीक है ना, क्योंकि अदरवाइज फिर वो अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही होगी और शोहर की जो है वो इज्जत नहीं करेगी, शोहर को जो है वो पता नहीं अपने से कोई घटिया किस्म की चीज समझेगी। ठीक है, दुनियादार तो हो ना, तो वो तो दुनिया की वजह से अपने शौहर को कम कमतर समझेगी ना, कि भाई मैं इतना कमाती हूँ वो इतना नहीं कमाता, मैं इस घर से आई हूँ और उसका घर जो है वो गरीब है, या उसका घर जो है वो इतना ऐसा उसका खानदान नहीं है, तो वो दुनिया की वजह से अपने शौहर को बुरा समझेगी, ठीक है ना, यानी उसकी बेइज्जती करेगी, अल्लाह का हुक्म तोड़ेगी। लेकिन आलमा जो है वो दीन की वजह से अपने शौहर की बेइज्जती करेगी, और दीन की वजह से जब अल्लाह का हुक्म कोई तोड़ता है तो उसका अजाब ज्यादा होता है। ठीक है, तो लेकिन कंडीशनल स्टेटमेंट है ये, अगर जो आलिमा साहिबा हैं जिन्होंने डिग्री हासिल कर ली है, किताबें पढ़ ली हैं, अगर उनको बात समझ में आ जाए कि ये जो इल्म है ना ये इसके ऊपर अमल किए बगैर इससे उनका फायदा नहीं है बल्कि नुकसान है, तो फिर जब उसको बात समझ में आ जाएगी तो फिर वो कर सकती है गैर आलिम लड़के से भी शादी कर सकती है। ठीक है, बात समझ में आई, चलें यहाँ पर हम क्लास रोकते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम।